तारांकन 2 अप्रैल रविवार सेक्टर 11 जैन स्थानक दिल्ली। मजबूत इरादा, प्रभु से नाता, थम्स अप का चिन्ह। तारांकन प्रवचनकार जनाचार्य श्री ज्ञानचंद जीमा सा। तारांकन 2024 की चातुर्मास हेतु सेक्टर 11 की आग्रह भरी विनंती। तारांकन आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। सफल होने के 3 नियम हैं, मजबूत इरादा, मेहनत ज्यादा, प्रभु से नाता। अब इसे समझने का प्रयास किया जाए। आचारांग सूत्र में आया है कि सुत्ता मुनि मुनिनो सया जागरंती, सोया हुआ अमुनि है, मुनि सदा जागते रहते हैं। सोने से मतलब क्या, एक फैक्ट्री, उसमें 500 मजदूर काम करते हैं, 8 घंटे के बाद सब फ्री होकर घर जाते हैं। उस फैक्ट्री का मालिक सप्ताह में एक बार आता है, लेकिन उसका ध्यान 24 घंटे फैक्ट्री की ओर है या नहीं, जनता की आवाज है। मालिक सोए, चाहे खाए, चाहे घूमने जाए, उसका हर वक्त ध्यान रहता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। एक 6 महीने के बच्चे की माता खुद खाना खाती है, पानी पीती है, सोती है, लेकिन उसका हर वक्त ध्यान बच्चे की तरफ रहता है। कितनी भी नींद में हो, बच्चे की एक आवाज सुनकर जग जाती है। इसी प्रकार संत, चाहे आहार कर रहे हो या प्रवचन दे रहे हो या आपसे बात कर रहे हो या फिर नींद ले रहे हो, उनकी हर क्रिया के पीछे उनका लक्ष्य संयम का है, इसीलिए वो सदा जगे हुए माने जाते हैं। यह समय है कुछ करने का, कौन इस दुनिया से चले जाए कुछ पता नहीं है, फिर क्यों संसार के मोह में पड़ना है। यदि आपको भगवान महावीर पर पक्का विश्वास है तो उन्होंने कहा है, साधु बने बिना कल्याण नहीं है, फिर भी इस संसार में बैठे हैं। वो ही व्यक्ति श्रद्धावान होते हैं जो तुरंत संसार त्याग देते हैं, जैसे नीलिमा जी छोड़ रही हैं और पवन जी खुशी खुशी दे रहे हैं। आप भी समझे और आगे बढ़े, सोचने वाले सोचते रह जाएंगे। हमारे जयपाल जी सोचते सोचते चले गए, सोचने का नहीं करने का समय आ गया है। हमारे अजीत प्रसाद जी त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वक्ता हैं, वर्षों से भावनाशील हैं, परंतु अभी तक सोच ही रहे हैं। जबकि बेटा बड़ा डॉक्टर बन गया, बहू डॉक्टर है और बड़ा बेटा बहू भी टीचिंग करती है। सभी धार्मिक हैं, संपन्न हैं, लेकिन लगाव नहीं छूटा है। अब समझ आ गया है, सोना नहीं है, सोता है वो खोता है। प्रभु ने 17 प्रकार का संयम बतलाया है, हाथ पैर कान आँख सभी में संयम चाहिए। आँख आदमी के अंदर समता है, करुणा है, क्रोध है, विषय विकार है या घृणा है, आँखें सब कुछ बिना कहे कह देती है। अतः भीतर में संयम आएगा तो बाहर तो आ ही जाएगा। संयम आत्मा का संसार परमित करता है, भव कम करता है, दुश्मन आरे में भी साधना को सफल बनाता है। संसार में दुख भोगने की बजाय संयम का कुछ कष्ट सहना महान कर्म निर्जरा करना है। नीलिमा जी की दीक्षा नक्की हो गई है, मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया है, अब तो चाहे मृत्यु भी सामने आ जाए तो भी मोक्ष पक्की है, क्योंकि भावों में संयम आ गया है। आपके घर में नाश्ते में 1 या 2 आइटम बन जाते हैं, जबकि महाराज की गोचरी में 10 तरह के आइटम आएंगे, फिर भी महाराज संयम रखते हैं, क्योंकि वे स्वाद के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए खाते हैं। मैं जब 5-7 वर्ष का था तब का प्रसंग है, जब स्कूल ग्रीष्मावकाश होता तो कभी दुकान चले जाते, वहां चुपचाप बैठा देते। उस जमाने में मोबाइल टी टूई तो था नहीं, दुकान पर बातें भी नहीं करने देते, पैर भी पसारने नहीं देते, सोने तो देते ही नहीं। यह कहा जाता कि एकदम सावधान होकर बैठो, सामने मार्केट में ध्यान रखो कि आपके काम का कोई ग्राहक आ रहा है, उसे प्रेम से बुलावो और इतने सम्मान के साथ बात करो कि वो एक की जगह 4 वस्तु खरीदे। तब फिर यही बात साधक के लिए सोचने वाली बात है कि जीवन थोड़ा है, उसे ऐसे अपनाएं कि कम समय में अधिक लाभ हो, प्रमाद में समय नहीं गंवाएं। पहले जब आया तो 24 घंटे चौविहार वाले पौष्ठ प्रतिमास सैकड़ों सैकड़ों करवाएं, उसमें पवन जी, नीलिमा जी, अजीत जी आदि बहुत लोग थे, जिनमें कई आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिपूर्ण पौष्ठ कल करना है तो आज रात से ही खाना पीना छोड़ना होता है। दूसरे दिन जिस समय पौष्ठ करते हैं तब से 24 घंटे तक खाना पीना बंद करके साधना में लगना होता है। करीब करीब सभी पूर्वाचार्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अगर इतना न कर सके तो आज रात्रि के 12 बजे बाद चौविहार करने पर ही दूसरे दिन 24 घंटे का प्रतिपूर्ण पोषण हो सकता है। यही नहीं, नवकारसी पोरसी आदि कोई भी पच्चक खान तभी हो सकते हैं। स्थानांग सूत्र में 5वें थाने में 5 व्यवहार का वर्णन है, उसमें 5वां जीताचार है। इसका तात्पर्य है कि बहुत से आचार्य मिलकर जो निर्णय लेते हैं वो शास्त्र की समाचारी को मान्य है, लेकिन आज के तथाकथित महात्यागी चरित्रात्माएं यह कहने लगी है कि सूर्योदय के पहले तक खा पी सकते हो, फिर पौष्ठ करो तो भी हो जाएगा, नवकारसी पोरसी उपवास करो तो भी हो जाएगा, इस तरह की प्ररूपना कैसे शास्त्र सम्मत कही जा सकती है? यह एक ढंग से मुसलमान के रोजे हो जाएंगे। जैनियों की तो यह पहचान है कि रात्रि भोजन नहीं करना। यह जैनेतर प्रबुद्ध जीवी व्यक्ति भी जानते हैं। जब जैनी को रात को खाना ही नहीं तो रात को खाकर पोषक तो क्या नवकारसी भी कैसे हो सकती है? तो महापुरुष फरमाते हैं कि कुछ नहीं करने की अपेक्षा कुछ कर तो रहा है, यह बात ठीक है, तो जितना कर रहा है उतना ही बोलो। जो व्यक्ति एक चाय पीकर फिर कुछ नहीं खाता तो उसे उपवास नहीं कह सकते, क्योंकि उसने चाय पी ली है। आजकल कई तथाकथित श्रावक लोग रात को खा पीकर आकर 9-10 बजे आकर सवर कर लेते हैं और सवेरे भी बिना प्रतिक्रमण किए घर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैंने पौष्ठ किया है, और साधु भी अपनी अहम तुष्टि के लिए कह देते हैं कि हमारे यहाँ चातुर्मास में 2000 पौष्ठ हुए हैं। इस प्रकार की भाषा बोलकर पब्लिक को गुमराह किया जाता है, जो धर्म के नाम पर मात्र अहंकार तुष्ट करने का झूठा तरीका है। प्रतिपूर्ण पौष्ठ करना ही सर्वश्रेष्ठ पौष्ठ है। बंधु, जाग जाए, समय न खोए, संयम से नाता जोड़े, परिवार के मोह में ना फंसे। अभ्यास करने पर मोह छूट जाएगा। आज आदमी को कुत्ता पालने का बड़ा शौक है। गाय घुमाने में शर्म और कुत्ता घुमाने में गर्व की अनुभूति करते हैं, जबकि हर दिन सवेरे चाय पीना है तो दूध चाहिए। वो कुत्ते से नहीं गाय से मिलेगा। गाय हमारे लिए संजीवनी का काम करती है। इसे जानने पर सब बात समझ आ जाएगी। एक बार स्वामी रामकृष्ण से एक साधक ने पूछा, मैं हमेशा भगवान का नाम लेता रहता हूँ, फिर भी मेरे मन में कुविचार क्यों उठते हैं? उन्होंने साधक को समझाने के लिए एक किस्सा सुनाया। एक आदमी के पास पालतू कुत्ता था। वह उसे गोद में लेता, यहाँ तक कि खाते पीते, सोते जागते या बाहर जाते समय भी कुत्ता उसके साथ ही रहता था। उसकी इस हरकत को देखकर एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे कहा कि एक कुत्ते से इतना लगाव ठीक नहीं, क्या पता कब किसी दिन कोई अनहोनी कर बैठे। यह बात उस आदमी के दिमाग में घर कर गई। उसने तुरंत कुत्ते से दूर रहने की ठान ली, लेकिन कुत्ता इस बात को भला कैसे समझे। वह तो मालिक को देखते ही दौड़कर उसकी गोद में आ जाता था। बहुत दिनों की मेहनत के बाद उसकी यह आदत छुटी। स्वामी जी ने साधक से कहा, तुम भी वास्तव में ऐसे ही हो। जिन सांसारिक भोग विलास में आसक्ति की आदतों को तुमने लंबे समय से पालकर छाती से लगा रखा है, वे भला तुम्हें आसानी से कैसे छोड़ सकती है। धीरे धीरे अभ्यास से, भगवान की भक्ति से कुविचार सुविचारों में परिवर्तन होने लगेंगे। याद रखे, बुरी आदतों का दमन करोगे तो ही मन की एकाग्रता बढ़ेगी और चित्त में शांति आती चली जाएगी। जब कुत्ते की आदत छुड़ाने में इतना टाइम लग गया तो जन जन से काम क्रोध मोह की आदतें पड़ी है, उसे छुड़ाने में कितना टाइम लगेगा, जरा सोचे। लेकिन आपका लगातार प्रयास आपकी आत्मा को ऊपर उठाएगा। वीर पुत्र तेंदुलकर एक संस्कारी बालक था। पहाड़ी जीवन और जंगल के निवास ने उसे निर्भीक बना दिया था। वह नित्य सवेरे गाय भैंसे आदि लेकर जंगल की ओर निकल जाता था। दिन भर पशुओं को चराकर शाम को घर लौटता था। तेंदुलकर अपने माता पिता का इकलौता ही पुत्र था, अतः वे उस अत्यधिक प्यार किया करते थे। पहाड़ी लोग मुख्यतया घी बेचा करते थे और घी में प्रायः चर्बी मिलाया करते थे। वे लोग सर्प अजगर सुअर आदि जानवरों की चर्बी को दही में मिलाकर मक्खन के रूप में निकाल लेते थे। उसी मक्खन के घी को असली घी के नाम से बेचा जाता था। नगर के लोग पहाड़ी घी को बड़े विश्वास के साथ खरीद लेते थे। इस प्रकार उनका धंधा जोरों पर चल रहा था। तेंदुलकर अभी छोटी उम्र का ही था और प्रतिदिन गायों को जंगल में चराने ले जाता था। एक दिन उसने जंगल में ध्यानस्थ मुनिराज को देखा तो उनके पास जाकर बैठ गया। मुनिराज ने ध्यान खोला तो नज़र बच्चे पर चली गई। उस बच्चे की भव्यता देखकर उन्होंने सत्य का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि मानव अपने जीवन में यदि एक सत्य का ही त्याग कर दे तो उसका जीवन सुधर जाए। बालक तेंदुलकर उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्रतिज्ञा कि आज से मैं न तो असत्य व्यवहार करूंगा और न ही असत्य बोलूंगा, बल्कि जिस घर में असत्य व्यवहार होगा उस घर का मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। तेंदुलकर का संकल्प सुनकर मुनिराज ने सावधान किया, प्रतिज्ञा कठोर है, एक बार फिर सोच लो। तेंदुलकर ने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया, सोच लिया है, आदरणीय, जब नियम लेना ही है तो फिर सरल और कठोर क्या देखना, आप तो मुझे संकल्प करवा दें। मुनि ने मंगल पाठ उच्चारित करते हुए संकल्प दिलवा दिया।